संत एवाच छिंदंती मनो व्यासंग उक्ति। व्यासंग माने क्या? संग विशेष रूप से संग आसक्त दुर्जर ग्रह श्रृंखला को अपनी पैनी तलवार के धार से दूसरा नहीं काट। कृष्ण गोपियों ने कृष्ण के लिए घर गृहस्थी रूप अक्षेद्य श्रृंखलाओं को काट कर एकनिष्ठ भाव से उनका भजन किया जाए। कृष्ण उनके इस प्रेम सेवा और त्याग का ऋण चुकाने में अपने को सर्वथा असमर्थ समझते हैं। ये यदि माइक हो गया तो रहा क्या? भागवत के इस सर्वोत्तम श्लोक का तात्पर्य ही तो गड़बड़ हो गया। यदि ये माइक हो गया, झूठा हो गया तो। और जो भागवत पढ़ करके महाप्रभु की धारा में आकर के और उसके प्रति जिसको लोभ नहीं हुआ तो ऐसा दुर्भागा विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं है। असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड है ना, उनमें सबसे दुर्भागा कौन होगा? जो गोस्वामियों के परंपरा धारा में आकर के महाप्रभु से संपर्क स्थापित करके इन भावों में जिनको लोभ नहीं हुआ उनके जैसा विश्व ब्रह्मांड में कोई पशु और दुर्भागा नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते थोड़ा सा भी यदि महाप्रभु के संपर्क में आकर के उनके विचारों को लेकर के चलेगा जरूर प्रेम होगा और उसको लोभ जरूर उत्पन्न होगा। और कोई दूसरी पद्धति नहीं है। कृष्ण ने लीलाएं की कि किस लिए की? जिनका निर्मल हृदय है इन लीलाओं को सुनकर के आकृष्ट होगा और वैसे ही भजन करने का लोभ उसमें उत्पन्न होगा। इसलिए इन लीलाओं को अनुग्रह करके किया जो कभी नहीं जिस लीला को प्रकट किया। ये गोलोक वृंदावन की ये लीलाएं वहां से इसको प्रकट किया। किस लिए? क्यों? परम करुण कृष्ण रसिक शेखर इसलिए उन्होंने किया। यदि ऐसा कहो कृष्ण तो छली हैं, मायावी हैं, उन्होंने छल चतुराई से गोपियों को केवल मनोरंजन करने के लिए अपने को ऋणी बतलाते शास्त्र में किसी के ऋणी नहीं है। कृष्ण भला परमात्मा परमेश्वर पर ब्रह्म होकर के वो ऋणी किसी के हैं? वो तो एक ऐसा ही छल करती है। जैसे शिष्य कोई भिक्षा गया और थोड़े से कुछ पैसे लेकर के आया भिक्षा से और गुरु जी को दिया। गुरु जी ने कहा मैं तुम्हारा ऋणी हूं। हाँ पैसा ले आया। जैसे कि हम लोग जब हम लोग मठ में पहले आया आज से सोचो 1946 कितना वर्ष होता है 50 के
अड़तालीस
उस समय में पैसे का कितना मूल्य था? उस समय में बहुत मूल्य था। 10-20 रुपए में मठ चल जाता था, 1 रुपए में बाजार हो जाता था हम लोगों के सामने। तो उस समय में घर छोड़ करके आया और भिक्षा करने के लिए निकल गया उस पार में नई घाटी और उधर उधर में चला जाता था अकेले। दिन भर घूम करके सवेरे से शाम तक 8 रुपया हो गया और गुरु जी को दिया। गुरु इतने प्रसन्न भये जो क्या कहा। आज उनको मानो जी सब कुछ उनको मिल गया इतना प्रसन्न होकर उन्होंने। अच्छा तो वो प्रसन्नता से यदि किसी को भजन मार्ग में और उन्नत होकर के ये सब विचारों को हम लोगों को सुनते अब तो उनको कितनी प्रसन्नता होती। वो पैसा कुछ बड़ा नहीं था, वो हम लोगों को उत्साहित करने के लिए ऐसा था। जिससे वो बातचीत करते थे जिस शिष्य उसको ऐसे प्रेम से बोलते थे मानो तुमको सबसे अधिक प्रेम करता हूं प्यार करता हूं। तो ये कृष्ण ने छल करके उन गोपियों से ऐसा कहा न पा रहे हम निरवद्ध संजीव जान मैं तुम्हारा ऋणी हूं। कोई कोई यदि कहे मनोरंजन के लिए ऋणी बतलाए वास्तविक में ऋणी नहीं बतलाया यह बात युक्ति संगत नहीं मालूम पड़ती। माने क्या? युक्ति से जब विचार करेंगे तब यह ठीक नहीं उतरती है, युक्ति से उतरती नहीं। अर्थात यह बात ठीक नहीं, सचमुच में वो ऋणी थे। क्योंकि परम एकांतिक भक्त चूड़ामणि महावीर उद्धव जी इस मिथ्या और अनित्य विषय में भजन की पराकाष्ठा क्यों दिखाई? उद्धव जी जैसे व्यक्ति देश का अनुमोदन किया। क्या अनुमोदन किया?
उन्होंने
ये कहा कृष्ण की वंदना नहीं की, कृष्ण को भूल गए। जिस कृष्ण को एक मिनट के लिए नहीं छोड़ते थे, आज उद्धव जी ब्रज में आकर के देखा कि कृष्ण तो यहीं पर संपूर्ण रूप से हैं, असंपूर्ण रूप से द्वारका में है, पूर्ण रूप से यहां पर है। इसलिए कृष्ण ने जो बात कही थी वो ठीक है, इसीलिए गोपियों की ओर के लिए कहा आसाम हो चरण रे। जिसको श्रुतियां जिन कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आज तक नहीं पा सकी, और गोपियों ने गोपियों के वो कहते हैं अत्यंत अधीन है, इसलिए उन गोपियों की चरण वंदना करता हूं। मैं ब्रज में जन्म लेना चाहता हूं घास के रूप में, पेड़ पौधे के रूप में नहीं। क्यों? कृष्ण की चरण धूली हमारे सिर पर लग जाएगी? नहीं, कृष्ण तो हम जा रहे हैं वहां पर ले लेंगे, कृष्ण की चरण की धूली हमको जरूरत नहीं है। क्यों क्यों नहीं जरूरत है? इसलिए कि गोपियां के सबसे अधिक वो वशीभूत हैं, गोपियों के, गोपियों की कृपा होने से कृष्ण अपने आप वशीभूत हो जाएंगे, कृष्ण की चरण धूली से वो प्रसन्न होंगे, वशीभूत नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने वृंदावन में वैसी गोपियों की चरण धूली से अभिषिक्त होने के लिए गुल्म लताओं में जोड़ियों में जन्म लेने की उन्होंने प्रार्थना की है। आसाम हो चरण इत्यादि, क्या इसके द्वारा पटरानियों की अपेक्षा गोपियों का प्रेमोत्कर्ष सूचित नहीं होता? कभी उन्होंने महिषियों के लिए कहा? महिषियों के लिए नहीं कहा। यदि किसी समय उनको मान होगा गोपियों की प्रतिष्ठा दे रहे थे, प्रशंसा कर रहे हैं, और सत्यभामा जी की वहां से पृथ्वी को धमकाती हुई पैरों से चली गई, अरे ये सत्राजीत जैसा बदमाश, उसकी लड़की भी वैसे ही, जाओ बुला लो, अभी अभी नहीं आती है तो उसको अभी माल से बाहर कर दूंगा। बस उनकी दासी दौड़ करके गई, गई अरे पधारिए जल्दी से, आज कृष्ण बड़े रुष्ट हैं, तुमको महल से निकाल देंगे। बस थप थप कांपती हुई फिर से कपड़े पहन करके और सुन गए खंभे के आदमी चुपचाप। और कृष्ण कह रहे हैं मैं जानता जैसी बात है, और गोपियों की प्रसन्नता प्रशंसा करने से ही इसको जलन होती है, तो मैं इसको अभी निकाल देता। मैं तो गोपियों की प्रसन्नता के लिए उद्दीपना के लिए इनसे शादी की, नहीं तो इनसे हमको कोई आवश्यकता नहीं है। एकदम उसको कह दिया, और रुक्मिणी के कह दिया जाओ दूसरे से शादी कर लो, और नहीं तो मैं शादी कर, जिससे कहो उसको बुला करके तुम्हारी फिर से शादी कर। तो वो शादी नहीं करेंगे यदि, क्यों नहीं करेंगे? हमको नीचा दिखाना है इसलिए तुमको ग्रहण कर। इस तरह से तो तुमसे श्रेष्ठता गोपियों की कैसे होती? गोपियों को कृष्ण कभी डरा धमका दिए हो ऐसी कभी हुई है? धमकाने का कोई क्योंकि मर्यादा से तो बंधे ही नहीं है, उनकी तो कोई खरीदी भी नहीं है, ते असल कदार शिकार विवाह देकर के उनको नहीं लिया गया, इसलिए उनको इस अतुलनीय प्रेमोत्कर्ष का कारण यह है, स्वाभाविक है, स्वच्छंद उनका मिलन है, कोई हेतु नहीं है। इसलिए आर्यपथ का आर्यपथ को छोड़कर के स्वजनों को छोड़कर के कृष्ण में एकांतिक अनुराग से मिलती, स्वाभाविक अनुराग से उनका परस्पर मिलन है। यदि उनका स्वजन और आर्यपथ अर्थात पतिपता धर्म त्याग और माइक व्यापार माना जाए तो फिर रहा क्या भागवत में? इसलिए यदि ऐसा माना जाए तो उद्धव के वचन भी भ्रम पूर्ण हो जाएंगे, भ्रम हो जाएंगे। दशाक्षर और अष्ट दशाक्षर मंत्र का तात्पर्य भी परुणत्व और उपपत्तित्व भाव में है। गोपी जन बल्लभा कितना बज गया? सवा छह बज गया, अभी प्रकाश भेज देते हैं। शब्द की अद्भुत शक्ति के संबंध में जिनको ज्ञान है उनसे ये बात नहीं सीखी है, और जिनको शब्द का कोई ज्ञान ही नहीं है, मंत्र से कोई संबंध नहीं है, गुरु जी से कान फूकवा लिया, गुरु जी भी वैसे ही जो कान फूकने वाले हों, उन लोगों को ये रहस्य मालूम नहीं होगा। अथवा जो कपटी धूर्त हैं, सांसारिक पदार्थों की अधिक महिमा देते हैं, समझते हैं, और परमात्मा की महिमा नहीं देते, उन लोगों के लिए ये समझना गुरु जी उनका यथार्थ में कान फूक देते हैं, तात्पर्य नहीं देंगे। इसलिए खूब निष्कपट होकर के गुरु वचनों के विश्वास करके और किसी के लिए मत चेष्टा करो, केवल भक्ति के लिए चेष्टा करो। ये किसी और चीज के द्वारा नहीं मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा? या तो कृष्ण प्रसन्न होकर के हर किसी कृपा से दे दें, या कोई ऐसे संत हो जो दे सके, तब तो मिलेगा। इसलिए शब्द की अद्भुत शक्ति, अर्थात मुक्त प्रग्रह वृत्ति। मुक्त प्रग्रह वृत्ति किसको कहते हैं? जो अंत तक सबसे श्रेष्ठ प्रेम तक पहुंच जाए उसको कहते हैं
मुक्त
कोई भी शब्द, कोई भी शब्द है, ये सब अंत में मुक्त प्रग्रह वृत्ति से कृष्ण को ही लक्ष्य करते हैं। सूत्र, वृत्ति, टीका, शब्द, कारक, जितने समास, जिसने व्याकरण की चीजें हैं, जगत में जितने नाम हैं, सब अपने अंतिम में लक्ष्य किसको करते हैं? कृष्ण को लक्ष्य करते हैं। किंतु किसको ज्ञान होगा? चोरी, चोरी खूब खराब चीज है ना, अब इसको बढ़ाओ। कृष्ण ने दिल की चोरी कर ली, अब ये चोरी कैसी रही? बुरी हुई कि अच्छी हुई? सबसे गंदा कोई भी शब्द ले लो और उसका प्रयोग कर लो, देखो जिसे कहां तक हो पहुंच गया। कोई भी नाम ले लो, शिव, शिव माने क्या? कल्याण। कल्याण माने क्या? रुपए पैसे का कल्याण, ना स्वर्ग का सुख कल्याण, ना वैकुंठ का सुख कल्याण, ना द्वारकाधीश का प्रेम, ना उसे ऊपर उठ जाओ ब्रज का प्रेम, ब्रज के प्रेम में भी दास सख्य बात्सल्य का प्रेम, उसे भी ऊपर उठ जाओ, कौन सा कल्याण? गोपियों का अनुगत्य, गोपियों के अनुगत्य में कौन सी गोपियों का अनुगत्य? वहां तक पहुंच। कोई भी शब्द ले लो, विष्णु शब्द क्या है वो? इदंत विष्णु विक्रीडितम ब्रज बुद्धि इदंत विष्णु। यहां पर विष्णु माने क्या लिया है? विष्णु माने क्या है? यहां सर्व उत्तम, जो एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण हो करके और नित्य करके व्याप्त हो रहे हैं, इसका नाम है विष्णु। इसी तरह से कोई भी शब्द ले लो, उसकी रूढ़ी वृत्ति से वहां पर जब चलेंगे विचार करके, यह व्याकरण में नहीं लिखा है, व्याकरण के द्वारा इसकी साधना नहीं होगी, ये होगा किसी हमारे रूप गोस्वामी जैसा हृदय जिसके साथ में तंत्री में तंत्री मिली हुई है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि हमारे गुरु पार्षद इत्यादियों की तंत्री में तंत्री मिली हुई है, वो सब इन भावनाओं को ग्रहण करते। व्याकरण से सिद्धि नहीं होगा। एक आदमी जंगल में जा रहा था, हमारा जैसा था, बहुत पंडित था, वो जा रहा था, विद्वान आदमी थे, लंबी चोटी थी, ब्राह्मण थे और सांगो पांग वेद का अध्ययन किया था, विशेष कर अनुसार और विसर्ग में बहुत सी कसरत उन्होंने की थी। तो वो जा रहे थे जंगल में, जंगल के किनारे पहुंचे तो लोगों ने कहा जी पंडित जी आप भीतर में मत जाइए। क्यों? क्यों नहीं जाएंगे? हम तो जरूर जाएंगे, आप मत जाइए। बतलाओ तो किस लिए? अरे भाई वहां पर बाघ रहता है, आपको मार जाएगा। भागवत बाघ मेरा कुछ नहीं कर, बाघ मैंने जिग्रह पी थी, व्याघ्र कौन सा जिग्रती, तो वो तो जिग्रती मैंने सूंघता है, वो अधिक से अधिक सूंघेगा और हमारा क्या कर लेगा? हम व्याकरण के पारदर्शी विद्वान आदमी हैं, इसलिए कोई भी धातु और ईश्वर का विचार करके, व्याकरण का विचार करके हम लोग चलते हैं। तुम्हारे जैसे मूर्ख थोड़े भाई हैं। अच्छा पंडित जी आप नहीं मानते हैं, जाइए किंतु नहीं, और उसका एक लोट सोटा ले लीजिए, डंडा ले लीजिए। ये डंडा फंडा मैं कुछ नहीं लेता, देखो तो मूर्ख है, मैं जब आऊंगा तो तुमको बतलाऊंगा। पंडित जी आप आकर के बतलाने वाले नहीं होंगे। तो वो गए, इतने में थोड़े देर में प्रवेश किया एक लंबा बंगाल टाइगर सामने आया और एकदम गुर्राता उनके पास में आया। उन्होंने कहा जी ये तो सुनेगा तो, किंतु जब ऐसे पंजा मारा तो क्या होता है, आप कथित खादतीस का अर्थ भी होता है तो वो कथित में ही आ गया, ये ठीक रहता है, तो हमको पहले विचार करना नहीं आना चाहिए था। और इतने में बाघ उनको मार करके खा लिया। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को विचारों को समझ मरने के लिए ऐसा विचार किया। आज ही तक बंधा कल्पतरु पैतानां पावने ज्ञानंजन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे बन्धाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्तु। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। कंचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुदेवे प्रणमामि हरि। आदेवि काकुभरगदगदयाज्यवाचा जाते निपस्तभुवि दण्डवतोद्भटर्ति अर्चवृषाधमभुतस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विकेतवगणे गणनम् अङ्गश्यामलिङ्गटाभिरवि मन्दीकृतेन्दीवरम् जटंजाबुदरोदतम पट्टरश प्रिया बृंदारण्य निवासीनमदिल सद्दाभिरामोदर राधा स्कंद निवेशल ध्याय भक्त्या विहीनापराधल कामितरंगमस्य कृपामयी स्वयं शरणं प्रपन्ना वंदे नमस्ते गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृष्ण द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमा तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो भिन्नास्ति गतिर्। जय गोस्वामी जी का जीवन के संबंध में हम लोगों ने जो प्रारंभ किया था उसमें स्वकीय परकीया के संबंध में पहले जय गोस्वामी की बात में इस समय में हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का अनुशीलन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 17 पॉइंट तक हम लोगों ने विचार किया। अंत में वो कहते हैं कि कृष्ण के ब्रज संबंधी समस्त लीलाएं भी ये सत्रह सप्तक है। ग्यारह दस तक हुआ था, ये हो गया अर्थात मंत्रों में दशाक्षर और अष्टाक्षर मंत्र में भी प्रौढ़ात्व का ही विचार है। कृष्ण के विभिन्न ध्यानों और मंत्रों में भी उक्त भाव की झलक होती है। जैसे कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वत्सले कौशुभम नासाद्रे वरमुक्तिकम कर चले करे कंकर सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपी श्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल। वंशी नस्यास्य चंद्रम स्मितयुत तुलंती सवस्त्रम वरण्यम कंजाक्षम सर्वदक्षम नौ नहीं हमको गबड़ कंजाक्षम कंबुकंठम शितशुभमुखम स्वाधरी नस्तवेणु श्यामं शांतं त्रिभंग ललितम वंदे वृंदावन युवति सतभृत ब्रह्म गोपाल। ये सब मंत्र है, मंत्र में वही अंशालंबित वामकं दलधरम मंदं भ्रूलतम किंचित कुंचित कोमलाधरपुटम साची प्रकारे क्षण आलोलंगुलि पल्लवी मुरलिकाया पूरयन्तं मुदा मूले कल्पस्रो त्रिभंग ललितं ध्याये जगन्मोहनम। सब जगह वही फूलेंदी वर कांति मदनम बराहवतं संप्रियं शिवशंक मुदार कौसुभधरं पीतांबरं सुंदरं गोपीनन्दनोत्प्लावित गोपगोपसंघावृतं गोविंदम कलवेणु वादन परम दिव्यांगम भूषाभरि गोपीनां नैनोत्प्लावितम गो गोप संघावृतम। ये सब में वही आता है। ध्यान में भी यही भाव की झलक आती है। साथवर ध्यान की परिपक्व अवस्था में भी प्रकट लीला के भावों को ही प्रत्यक्ष करते हैं। ध्यान में अप्रकट लीला तो नहीं, ध्यान किसका होगा जो इस जगत में प्रकट होगा उसको। इसलिए लीला अत्यंत अनित्य व मायकी नहीं है। जैसा ध्यान करते हैं वैसे जब लीला हो रही है उसका दर्शन होता है तो वो अनित्य और मायकी कैसे होगी, इसलिए मायकी नहीं होगी। गीता में भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य बतलाया, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः वो संसार को छोड़ करके माया में कभी फंसता नहीं है, माया से पार चला जाता है। जो भगवान के जन्म और कर्म को नित्य समझता है तो भगवान का ये जन्म और कर्म दोनों ही नित्य हैं। कर्म में नहीं है लीला, इसलिए लीलाएं नित्य हैं। रामानुज आचार्य ने श्लोक की व्याख्या में भगवान के जन्म कर्म और परिकरों का भी नित्यत्व स्थापित किया है। जिनके साथ में भगवान लीला करते हैं वो भी नित्य है, तथा गोप और गोपी गायें सभी नित्य हैं। मधुसूदन सरस्वती ने दिव्य शब्द का अर्थ अप्राकृत किया है। ये मधुसूदन सरस्वती का क्यों कहा, इसलिए कि ये अद्वैतवादी होते हुए भी उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया है, इसलिए दिया है। इसलिए दिव्य शब्द का अर्थ है अप्राकृत। अप्राकृत माने कृत, क्या कृत, कृष्ण की जो की हुई जो लीला है वो, तो वहां पर अप्राकृत माने उनकी लीलाएं जितनी है वो सब नित्य चिन्मय सत्य। पिपलादि शाखा साखी या पुरुष बोधिनी श्रुति में लीलाओं को नित्य बतलाया गया है। एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी भक्त हृदयाजान सरात्मा। नित्य लीलानुरक्त हो, नित्य लीला बतलाया गया है वो अनित्य नहीं है, इसलिए माइकी कैसे हो जाएगी। यदि राष्ट्रीय लीला माइक हो गई जो सबसे श्रेष्ठ लीला है तो और बाकी क्या रहा। विठ्ठलनाथ ने, विठ्ठलनाथ मैंने कौन, वल्लभाचार्य के सुपुत्र द्वितीय पुत्र विद्वन मंडल नामक ग्रंथ में भगवान के जन्म और कर्म की नित्यता प्रतिपादित की है। बृहद बामन पुराण में भी प्रकट लीला को नित्य बतलाया गया है। कैसे, मेरे प्रति जार धर्म द्वारा सर्वतोभावेन अत्यधिक शुद्ध स्नेह प्राप्त होकर के तुम सभी कृतकृत हो जाओगे। भगवान स्तुतियों के प्रति कारण, वेद की ऋचाओं के प्रति कारण तुमको जब लोभ हुआ है और उसी लोभ से हमको पाने के लिए तुम्हारे अंदर में लालसा हुई है, तो मेरे प्रति जार धर्म के द्वारा गोपियों के अनुगमन में सर्वतोभावन अत्यधिक सुदृढ़ स्नेह को प्राप्त होकर के तुम सभी कृतकृत्य हो जाओगे। भगवान के नाम नित्य हैं और एक एक लीला के द्वारा भगवान के नाम निर्दिष्ट किए गए हैं। लीला नहीं नित्य होने पर उनका रास बिहारी नाम भी अनित्य हो जाएगा, ये भी नाम अनित्य हो जाएगा। ऐसी दशा में भजन का जो सार है वो तो माइक हो पड़ेगा, ये सब तो भजन के सार हैं, ये सब माइक हो जाएगा, वह भी माइक। भगवान नाम को अनित्य समझना नमापराध है। भगवान के नाम को कभी भी अनित्य मत समझो, नहीं तो ये नमापराध हो जाएगा। वो भगवत स्वरूप है, कृष्ण गोविंद इत्यादि राजकिहारी इत्यादि जो नाम है इनको क्या समझो, कृष्ण ही समझो, उसे अलग मत समझो। इसलिए श्रुति में या उपनिषदों में या ब्रह्म सूत्र में वो एक सूत्र है, सूत्र है जो ये विग्रह ही आप हैं अरूपवत एव ही अरूपवत एव ही अरूपवत एव माने क्या, अरूपमत माने होगा न रूपवत, रूप के समान नहीं क्या, आपका जो विग्रह है वही आप हैं, विग्रह के समान आप नहीं हैं। न रूपवत रूप के समान नहीं, आप स्वयं वही विग्रह ही है, देह देही का भेद नहीं है, बल्कि नाम स्वयं स्वरूप ही नाम के रूप में प्रकटित है, ऐसा समझ करके भगवान का नाम करने से उसका यथार्थ फल होता है, ऐसे फल नहीं होता। नाम तो स्वयं, किंतु हम लोग नहीं समझते इसलिए नाम अपराध हो जाता है। हरिनाम कर रहे हैं ना, ऐसे भी नचाते हुए माला को कमन अच्छे हैं, भलो अच्छे हैं, आप कैसे हैं, नाम कर रहे हैं। भगवान को नाम का भगवान नाम स्वरूप ज्ञान है, उस समय किसी को प्रणाम नाम करते हैं किसी को प्रणाम कर सकते हैं कि नहीं, अरे भगवान तुम्हारे सामने है साक्षात, तुम्हें उनको करा दूसरे को प्रणाम करेगा तो फिर कैसे क्या किया है। इसलिए नाम को स्वयं भगवान समझ करके नाम करना चाहिए। हम यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर कोई आकर के कोई अत्यंत सवाड़ी भी हो, सवाड़ी मैंने समझते हैं सोने वाला व्यक्ति भी हो, यहाँ आकर के बैठ करके हमारे सामने सोए तो सोएगा, कान मल देंगे ना उनका, तो इस डर से वो नहीं सोएगा। और भगवान के सामने कोई सो जाएगा, भगवान का नाम कर रहा है, इसका मतलब है उसको ये ज्ञान नहीं है कि ये स्वयं भगवान है। भगवान का नाम कर रहा है उस समय हंसी जिल्लगी किसी से करेगा, किसी की निंदा करेगा, भगवान के सामने करना ये सब अपराध है। इसलिए यदि ये मालूम हो कि साक्षात नाम ही भगवत स्वरूप है, बस ये शुद्ध नाम हो जाए। बद्ध जीवों का ऐसा नहीं होता है, बृहद बामन पुराण में भी इसी को कहा गया है। भगवान के नाम नित्य हैं, लीला नहीं नित्य होने से उनके रास बिहारी इत्यादि नाम भी अनित्य हो जाएंगे। जीव गोस्वामी ने स्वयं ही भगवत संदर्भ में भगवान के नाम जन्म कर्म इत्यादि के नित्यत्व का प्रतिपादन किया है। जीव गोस्वामी ने स्वयं ही ऐसा किया, यही नहीं उन्होंने भगवान के रूप प्रकाश जन्म कर्म विशिष्ट लीला और परिकरों सबको तथा अनंत स्वीय स्वरूप शक्ति की अभिव्यक्ति से है। उनकी स्वरूप शक्ति से यह है क्या, उनकी लीलाएं, उनके परिकर, उनका धाम, सब कुछ क्या है, उनकी नित्य स्वरूप शक्ति का अभिव्यक्ति प्रकाश है। इसलिए तो उनकी स्वरूप शक्ति की यदि अभिव्यक्ति है ये गोपियां, तो यह अनित्य कैसे होंगी। उनकी लीला में जो भाव है वो
वो कैसे वो अनित्य हो जाएगा, माई की हो जाएगी, यहाँ पर स्वरूप शक्ति है वहां पर माया कैसे प्रभाव कर सकती, माया का प्रभाव नहीं हो सकता है। इसलिए जीव गोस्वामी की युक्ति के अनुसार सभी नित्य हैं, सब परोढ़ा और उपरति उपपति इत्यादि भाव जो ब्रज में है ये कैसे माइक हो जाएगी, ये माइक नहीं हो सकती है। ब्रज सुंदरिया दीप अपनी को साक्षी रखकर कृष्ण के साथ विवाह में बंधी हुई है, ऐसा किसी शास्त्र में उल्लेखित नहीं है। वेद से लेकर के पुराण और श्रीमद् भागवत इत्यादि में कहीं भी नहीं लिखा गया ये विप्र और अग्नि को साक्षी दे करके दोनों विवाह बंधन में कोई वैदिक क्रिया के साथ में हुई है, ऐसा कहीं नहीं उल्लेख है। यदि ऐसा कोई कहते हैं तो क्या यह विचार सुखदेव गोस्वामी के सम्मत होगा, सुखदेव गोस्वामी उसको नहीं मानेंगे। महाराज परीक्षित के द्वारा धर्म संस्थापक आप काम कृष्ण उपपति भाव के प्रति संदिग्ध होकर के प्रश्न करने पर ही सुखदेव गोस्वामी ये स्पष्ट रूप से कह सकते थे ये वो गोपियां की विवाहित पत्नियां हैं। जब परीक्षित महाराज ने पूछा तो वो स्पष्ट कहते थे अरे उनकी तो अपनी पत्नियां हैं, वो चाहे जो करें, उनको नंगी रखें या उनसे नाचाएं या जो करें, उसमें तुम कहने वाले कौन हो, उनकी तो अपनी पत्नियां हैं। उन्होंने नहीं कहा ये परदारा नहीं है, ये कह देते। उन्होंने कष्टप्राय सिद्धांत के द्वारा परीक्षित महाराज जी को समझाने का क्यों प्रयास किया, तेजी लोगों को इसके लिए दोष नहीं, न तेजियांश न दोषा तेजियांश पुरुषों को दोष नहीं, ईश्वरों को भी इसके लिए दोष नहीं है, तो कृष्ण तो सर्वेश्वर ईश्वर है, कैसे उनको दोष होगा। और एक बात बहुत विचारणीय है, हिंदू शास्त्र में हमारे सनातन रीति में वैदिक क्रिया में उपनयन से पहले किसी का विवाह नहीं होता, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कहीं भी बिना उपनयन के विवाह नहीं होता, पहले विवाह हो जाएगा तो उपनयन होगा, ऐसा नहीं होता, पहले उपनयन हो जाएगा तब। तो कृष्ण का ब्रज में उपनयन ही तो नहीं हुआ तो विवाह कैसे हो जाएगा, कब हो गया, संकल्प कर लिया जो गर्भ में हो गया, विवाह नहीं हुआ, यह आर्य शास्त्रों के विरुद्ध है। कहीं कहीं पति शब्द का उल्लेख जो देखा जाता है कहीं कहीं देखा जाता है वह पति शब्द का अर्थ विवाहित पति से न होकर के गति से समझो, जैसे कृष्ण जीव मात्र के पति हैं, माने क्या है? विवाहित पति हैं, पालन करने वाला वो पति के रूप में, केवल विवाहित पति ही नायक के प्रति पति कहे जाते हैं ऐसी बात नहीं। नायिका प्रकरण में प्रक्रिया के लिए स्वाधीन भर्तृका शब्द का प्रयोग देखा जाता है, स्वाधीन भर्तृका जो अपने पति को वशीभूत करती हैं, उन्हें ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी नायिका के पति के रूप में परवणित में हो, ऐसा हो सकता है, किंतु दूसरी दूसरी नौकाओं से चाहे तो उनका दाम्पत्य संबंध नहीं है। रुक्मिणी के पति हुए तो सभाना के पति हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। वो कात्यायनी व्रत में जिनको वर दिया था उनको भी किसी आधार पर कह सकते हैं, है नहीं तभी कह सकते हैं स्वकीया के भाव, किंतु विवाह उनके साथ भी उनका नहीं हुआ है, कहीं भी उल्लेख नहीं, मन ही मन में वो ऐसा सोचती थी। श्रीमद् भागवत में परदारा विमर्शन का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता यदि ऐसी बात होती। अपने पतियों के संबंधों का भी उल्लेख है, जब उनके पतियों के लिए रसोई बना रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई कुछ कर रही थी, न जात बज देवी नाम पति भी सह संग मामा, ये लिखा अपने पतियों का संग कभी नहीं उन्होंने किया, ये तो लिखा अपने पतियों का, इसको कहां से कोई उड़ा देगा। इसी को कहते हैं पीछे का और पहले का, पूर्व और पर का संगति, ये पूर्व की संगति नहीं है, इसलिए जी गोस्वामी क्या यह विचार अपना नहीं हो करके दूसरों के लिए अच्छा। गोपाल स्थापने में सौ वो ही स्वामी भवति जी गोस्वामी ने कहा है तो उसके लिए ये करें, स्वामी शब्द का विवाह वाचक शब्द नहीं है, है? जितने सन्यासी लोग हैं उनको स्वामी कहते हैं, तो किसी के पति हैं, कोई तो पति नहीं है। गृहस्थों में भी बहुत से लोगों का स्वामी उपाधि होती है।
स्वामी ऐश्वर्य बोधक है,
पाणी में कहते हैं स्वामी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के रूप में स्वामी शब्द का प्रयोग होता है। लोके ही जस्य ही जस स्वामी भवती सतस्य भोक्ता भवती, इसलिए स्वामी कहने से विवाहित पति का ही बोध नहीं होता। जगत के लोक के स्वामी कृष्ण है, एक ही के नहीं, केवल सत्यभामा के ही स्वामी नहीं है, विश्व ब्रह्मांड के जितने जीव चौर अचराचर सबके वो स्वामी है, बल्कि समस्त संबंधी चिन्मय है। जहां माया शब्द का उल्लेख है वहां जोग माया से समझो, जहां भी माया शब्द का प्रयोग ब्रज में किया गया है वो किस लिए है, योग माया से समझो। असल में समस्त जोग माया के लिए कहा गया है, किंतु इस जगत का व्यक्ति माया के अतिरिक्त, इस महामाया के अतिरिक्त उसकी धारणा नहीं है, इसलिए जहां भी शब्द का माया का प्रयोग हुआ उसको समझ लेता है माया महामाया, किंतु है ऐसा नहीं। विशेष रूप से ब्रज की लीलाओं में ऐसा नहीं है, या वैकुंठगत लीलाओं में भी नहीं है। इसलिए अभिमन्यु के साथ में श्रीमती राधिका का जो पति भाव वर्णित हुआ है उसमें चिन्मय व्यवहार ही समझो, चिन्मय किसके द्वारा हुआ, जोग, तो जोग माया के द्वारा किया हुआ रचित जो भाव है वो कैसे जड़ होगा हो जाएगा, भगवान की लीला श्रृंखलाओं के मध्य में होने के कारण वह संबंध भी माई की नहीं है, जोग माया ही उस संबंध में हेतु है। श्रीमती राधिका कृष्ण की स्वरूप भूता राजनी शक्ति है, स्वरूप भूता राजनी शक्ति, इसमें कोई संदेह नहीं। लीला विशिष्ट राधा कृष्ण जुगली हमारे भजनी है, यह बात स्थिर सिद्ध है सिद्धांत की। लीला विशिष्ट राधा कृष्ण जुगली हमारे भजनी है, लीला विहीन राधा कृष्ण हमारी धारणा और भजन के अतीत। राधा कृष्ण जा रहे हैं कैसे रहेंगे, लीला जी लीलाविहीन राधा कृष्ण स्टैच्यू के भांति में स्थिर रहेंगे ऐसा नहीं। यहाँ एक शंका हो सकती है, जैसे गोपियों का दुर्जस मनोवेदना शास्त्र नंद इत्यादि के द्वारा निषेध वाक्य और यातनाएं देखी जाती हैं, सत्यभामा रुक्मिणी और राजमहर्षियों के संबंध में ऐसा नहीं देखा। जैसे जटला कुटला का नाम सुना जाता है और वो राधा कृष्ण की निंदा करती हैं और उनके सास ससुर उनके लिए यातना देते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहीं कहा जाता है। आपातः ऐसा विचार उठ सकता है कि रुक्मिणी और सत्यभामा जैसे हैं उनको कोई मना करने वाला और कोई निंदनीय कहने वाला नहीं है, क्योंकि विवाह हुआ था इसलिए सत्यभामा और रुक्मिणी राधिका और गोपियों से श्रेष्ठ हो गई। तो किंतु रागानुमाप हुआ, भावती गोपियों जैसे लौकिक दुख देखे जाते हैं उसी प्रकार दूसरों की अपेक्षा उनका अत्यधिक सुख भी देखा जाता है। जैसे दुख देखा जाता है वैसे उनका सुख भी कैसा, जो सत्यभामा और रुक्मिणी को किसी समय भी उपलब्ध नहीं, उनके लिए संभवपर नहीं है, सीता जी के लिए वो संभवपर नहीं है। देवियों का कृष्ण के सहित संबंध जो है अत्यंत अनुराग का फल है, अनुराग की अंतिम स्थिति का फल है। इस संबंध को स्थापन करने में उन्हें स्वजनों को त्याग करना पड़ा, आर्यपद से भी उनको विचलित होना पड़ा, यह सब क्लेश और दुख उनके लिए परम सुखद प्रतीत होता है। श्रीमती राधिका जी कृष्ण का दर्शन कर रही है गोवर्धन पर्वत के ऊपर में चढ़कर, दोपहरी है, पत्थर जल रहे हैं, नुकीले पत्थर हैं, उस पर खड़ी हैं राधिका जी, पैर में चुभ रहा है किंतु उनको मालूम नहीं हो रहा, और गर्मी से एकदम झुलस रही हैं, पैर भी जल रहे हैं, उनको प्रतीत ही नहीं होता, उनको उसी में ही सुख प्रतीत होती है। एक आदमी रेस में दौड़ा, उसके साथ में चुने हुए 50 व्यक्ति और दौड़ रहे हैं, विभिन्न भारतवर्ष के या वर्ल्ड से आए हुए हैं, और बेचारा वो 5 माइल की रेस दौड़ रहा है, दौड़ते पड़ते पसीने से लथपथ हो रहा है, और अंत में वो गिर करके जब आया तो सबसे फर्स्ट हुआ वो, और इसके बाद में वो हाथ करके एकदम बेचैन हो, कोई बेचैनी उसको महसूस और कष्ट होता है उसको, उसको क्या मालूम होता है आज हमारा जीवन सार्थक आनंद के अंतिम ऊपर में रहता है, एकदम आनंद से उत्फुल्ल हो जाता है, कभी आज परिश्रम हमारा सफल हो गया। साधारण जगत में भी लौकिक ही चीज में अनित्य चीजों में ही इतना आनंद है, तो उसमें जितना भी कष्ट झेल करके कृष्ण को प्राप्त करना और उनका स्नेह पाना ये कितने बड़े आनंद की बात है, उसमें सब आनंद का दुख भी आनंद हो जाता है, इसी का नाम महाभाव। ऐसे दिव्य अनुराग का चरम उत्कर्ष का दूसरा दृष्टांत गोपियों का अतिरिक्त नहीं है, इसीलिए बतलाया गया आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्त धाम वृंदावन रम्य काचित उपासना बधि वधु वर्गे न जा कल्पिता, वधु वर्गे न जा कल्पिता, यही एकमात्र गोपियों का ही दृष्टांत है और दूसरा इसके साथ में कोई तुलना का स्थल नहीं है। महाभावती गोपियों का यह असाधारण अलौकिक अनुराग पूज्यपाद श्री लज्जू गोस्वामी के लिए भी जो एकांत में प्रेत होगा इसमें कहने की क्या बात है, जगह जगह उन्होंने दिखलाया है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। इसलिए परम कृपालु जीव गोस्वामी ने पूर्व लिखित श्रेष्ठा लिखितम किंचित श्लोक किया, इसीलिए उन्होंने कहा किंचित लिखितम श्रेष्ठता, स्वयं इच्छा से लिखा और कोई दूसरे के लिए लिखा। कोई एक आदमी भजन कर रहा है, अष्टकाली लीला इत्यादि का चिंतन कर रहे हैं, साधारण एक आदमी के लिए कहेंगे तुम भी अष्टकाली लीला चिंतन करो, न कहेंगे पहले तुम्हारी श्रद्धा आए, वैष्णव की सेवा करो, नाम कीर्तन करो और नर्क को छोड़ो, यही तो कहेंगे ना, न कह देंगे तुम वहां पर पहुंच जाओ और वही काम करो, ये नहीं। इसलिए उपपत्ति के संबंध में श्री जीव गोस्वामी के लिए भी अभिष्ट है, यदि गुरु अग्नि विप्र को साक्षी रख करके ब्रजवालाओं के साथ में कृष्ण का विवाह हुआ होता तो उज्ज्वल ग्रंथि में आद्य पांच ये सब बातें विचार करके लिखी जाती, किंतु इसलिए नहीं, जीव गोस्वामी द्वारा लिखित दाम्पत्य परीक्षा दूसरे की इच्छा से हुआ है। ऋग्वेद में बहुत से मंत्रों में जात शब्द का उल्लेख है, अविवाहिता कन्या के प्रेमी को भी उक्त ऋग्वेद में उल्लेख देखा जाता है। आदि छांदोग्य उपनिषद शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका में भी वामदेव सोम उपासना के अंग रूप में पर की अभाव का अनुमोदन दृष्टि गोचर होता है। पाणिनि में भी ऐसा जारण की थी जा गौरी वैष्णव के साध और साधन के संबंध में प्रधान वैशिष्ट है पर की अभाव, इसके पूर्व किसी भी वैष्णव आचार्य ने इसका उपदेश नहीं किया, किसी भी रामानुज ने, मध्व ने, विष्णु स्वामी ने, निम्बादित्य ने, किसी ने भी इसका उल्लेख नहीं किया है। पर की अभाव का इंगित कृष्ण करणामृत के संख्यक श्लोक में भागवत के राजपंच अध्याय में इनकी टीकाओं में चंडीदास विद्यापति के पदावलियों में ही पाया जाता है। जयदेव के ग्रंथों में स्वस्थ रूप से नहीं है किंतु इंगित है, इंगित है केवल मात्र स्पष्ट नहीं है। यद्यपि गीत गोविंद में पैतुर मन कीलितम पति का उल्लेख है तथापि देही पद पल्लवम उदारम प्रथम सर्ग में बासंती राज के प्रसंग में दूर से श्रीमती का राधिका का दर्शन दुर्जयमान समुत्कंठितम गोपबधु कथितम वितनोति सलीलम इत्यादि वचनों के द्वारा श्रीमती राधिका कृष्ण की विवाहित पत्नी है ऐसा नहीं लगता। गौड़ी वैष्णव ने किसी भी वैष्णवाचार्य ने परकीय भाव से भजन का निर्देश नहीं दिया, गौड़ी वैष्णव के अतिरिक्त और किसी ने नहीं लिखा। बहुत से लोगों ने जीव गोस्वामी के संबंध में ऐसी धारणा है पक्षिया के पक्षपाती हैं, किंतु यह आशंका सर्वथा निर्मूल है, एकदम निर्मूल है। रूप श्री सनातन रघुनाथ दास कविकर्ण प्रभुत ने परकिया भाव से ही राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, परंतु जीव गोस्वामी का विचार यह था कि परकिया रस का आस्वादन अथवा परकिया भाव से भजन का अधिकारी बिरले हैं, इसलिए ये सभी का विचार ऐसा है, रूप गोस्वामी का ही और सनातन गोस्वामी सबका, जीव गोस्वामी का ही केवल नहीं। इसलिए मंत्र में ही उपासना की बात कृष्ण संदर्भ में उल्लेख किया है, इसलिए साधारण जो साधक है वो मंत्र में ही उपासना करेंगे, वो सरसकिन से होगी नहीं तो करेंगे क्या, हो ही नहीं। जैसे हम दामोदर लीला का ध्यान कर रहे हैं, कृष्णचंद्र जी बाल गोपाल हैं, ऐसे घुटरुओं पर चल रहे हैं, मोर पंख लगा है, संकित नेत्रों से देख रहे हैं, पीछे में रस्सी से ओखल बंधी हुई है। और कृष्ण देख रहे हैं ध्यान में, ये यहाँ पर आंसू सूख रहे हैं काली मिश्रित होकर के, और यहाँ तक ये शब्द आ गए। बच्चे कुछ खड़े हैं कृष्ण को ताली बजा करके खिजा रहे हैं। ये ध्यान है, मन क्या है, चौथा श्लोक में परम देव मोक्षम न मोक्षावधिमान इदं ते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरासता। मैं और दूसरा बार नहीं चाहता, यही ध्यान हमको बना रहे, इसको कहते हैं मंत्रमयी उपासना। एक ध्यान, अब कृष्ण को ऐसे देख रहे हैं वो चल नहीं रहे और कोई चीज नहीं, जैसा देख रहे हैं वैसा एक रूप में उनका ध्यान करना, ये मंत्रमयी उपासना। फुलेन दिवरकांत में ये भी क्या है, एक जगह उसको देख रहे हैं। अब बाल्य लीला से छोड़कर दैनंदिन का जितना उनका भाव है, कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं, यशोदा मैया से जा रहे हैं, कृष्ण जल्दी मचा रहे हैं, अरे सखा गए मैया छेड़ दे, और मैया बार बार उसको भलैया ले रही हैं, उसको सिंगार, और ये क्या कर रहे हैं, अरे मैया जल्दी से छोड़, वो सब सखा सब आगे गए, गैया रंभा रही हैं, वो भी आगे बढ़ रही हैं, मुझको जल्दी छोड़, वो मचा रहे हैं और उनका हाथ पकड़ करके और उनको छोड़। थोड़ी देर के बाद में कृष्ण चल पड़े, सब सखा बड़े उल्लसित हो रहे हैं,